Manugare akatangari. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Translation, please.
Hayo, Bhaino, Jai Bhim.
So, brothers and sisters, we've been understanding more and more deeply how to train our minds for freedom.
तो भाई और बहनों हम लोग और गहराई से अपने मन को कैसा प्रशिक्षित करना चाहिए ये सीख रहे हैं.
We've seen that dana is the most basic positive action we can perform.
हमने ये देखा है कि दान ये सबसे मूलभूत सकारात्मक ऐसी कृति है जो हमने करनी चाहिए.
If we can give, we have hope.
अगर हम दे सकते हैं तो हमें कुछ आशा उत्पन्न होती
है. Somebody who cannot give cannot grow.
जो कोई दे नहीं सकता है वो विकास उसका नहीं होता.
So the whole spiritual path begins with a simple act of giving.
इसलिए संपूर्ण धम्म जीवन एक छोटी सी देने की कृति से शुरू होता है.
Of course, giving for the sake of the Dhamma.
और निश्चित ही धम्म के लिए देना.
Giving to our friends.
अपने मित्र के लिए देना.
Giving to those who need.
और जिनको जरूरत है उनको देना.
But that's not enough.
लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है.
We need to go on to the next step of the spiritual path.
हमें आध्यात्मिक जीवन के अगले कदम पर जाना जरूरी है.
And that is शीला.
और वह है शीला.
We need to learn how to act out of maitri.
हमें ये सीखना होता है कि मैत्री से कृति कैसी करें.
We need to practice the precepts, to apply the precepts to our lives so that we act on the basis of maitri.
हम अपने जीवन में शीलों का आचरण ऐसे कर सके करना चाहिए ताकि उसके आधार पर हम लोग कार्य कर सके.
And I should just point out, of course, that Baba Sahib said that Shila is the basis of liberty, equality and fraternity.
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बाबा साहब कहते हैं कि शील यही समता स्वतंत्रता और बंधुता की बुनियाद है.
The police can control just a few people.
पुलिस जो है कुछ ही लोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं.
But the whole of society needs to be controlled by something else.
लेकिन संपूर्ण समाज को किसी दूसरी चीज से नियंत्रण होना चाहिए.
It needs to be controlled by Shila.
और ये शील से नियंत्रित होना चाहिए.
In other words, it needs to be self-controlled.
दूसरे शब्दों में उसका आत्मनियंत्रण होना चाहिए.
The police cannot control the whole of India.
सूर्य सारे भारत को पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकती.
Especially if the police themselves are not properly controlled.
अभी खास करके पुलिस ही खुद के नियंत्रण में नहीं है तो.
If the police are influenced by the old ideas.
अगर पुलिस पुराने ही कल्पनाओं के प्रभाव में है.
So we need to have Shila right the way through society.
और तो समाज में हमें शील हर जगह होना चाहिए.
Then Shila leads to samadhi.
और फिर शील समाधि के तरफ ले जाता है.
That means the cleaning of the mind.
इसका मतलब मन की शुद्धि.
Purifying the mind of unskillful mental states.
और अकुशल जो मन की अवस्था है उसकी स्वच्छता करना.
And making it very very positive.
और उसको और सकारात्मक बनाने के लिए.
Make it very happy, very friendly.
और उसको और ही सुखी और मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए.
It means making it very very strong.
इसका मतलब उसको और मजबूत बनाना.
And it means making it receptive, sensitive.
और इसका मतलब उसे और ग्रहणशील बनाना, संवेदनशील बनाना.
So that we are able to pick up other people, receive other people.
ताकि हम लोग दूसरों को ग्रहण कर सके.
We are able to be aware of other people and what they need.
और लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग सजग रह सके.
We are able to act in a way that harmonizes.
हम इस तरह से कार्य कर सकना चाहिए ताकि लोगों में सुसंवाद भी आ सके.
So that's the path, dana, shila, samadhi.
तो ये मार्ग है दान, शील, समाधि.
But it's not enough.
लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है.
You all know this from your own experience, it's not enough.
आप अपने स्वयं के अनुभव से ये जानते हो कि इतना पर्याप्त नहीं है.
Look at your own experience in meditation.
ध्यान साधना के अपने स्वयं के अनुभव की तरफ देखिए.
I know some of you have only just started meditating, but you still have some experience.
मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी ध्यान साधना शुरू की है, लेकिन आप अपने उस अनुभव को जानिए.
So for instance, you'll do the Anapanasati.
उदाहरण के लिए आप आनापान सति करते हैं.
And you'll become quite concentrated.
और आप काफी एकाग्र हो जाते हैं.
Your mind will be very still.
आपका मन बहुत स्थिर हो जाता है.
The bell goes.
घंटी बजती है.
Or Subhuti says, relax.
सुबुति कहते हैं आराम से उठ बैठो.
And what happens?
तो क्या होता है?
Your mind just starts chattering.
आपका मन बड़बड़ करना शुरू करता है.
Your mouth starts chattering.
आपका मुंह जो है बड़बड़ शुरू करता है.
Even though you've been asked to keep quiet, your tongue starts chattering.
आपको शांत रहो बोलो मत कहने के बाद भी आपकी जुबान चालू हो जाती.
You don't even know that you started talking.
आप ये जानते भी नहीं कि आपने बोलना शुरू कर दिया.
So that the meditation goes so far, but it doesn't last.
तो ध्यान साधना कुछ तो मदद करती है लेकिन ज्यादा समय तक टिकती नहीं है.
As soon as you stop meditating, your mind starts to wander again.
तो जैसे ही आप ध्यान साधना बंद कर देते हैं आपका मन भटकने लगता है.
Or you do the Maitri Vikas.
या आप मैत्री विकास करते हैं.
And you feel very strong good wishes towards all living beings.
तो ध्यान साधना में सभी प्राणियों के बारे में आपको बहुत मैत्री महसूस होती है.
You're just thinking, may everybody in this universe be well, may they be happy.
तो आपके मन में विचार चलते हैं कि सारे दुनिया के सब लोग सुखी हो आनंदी हो.
And then after the meditation, what happens?
और फिर ध्यान के बाद में क्या होता है?
Somebody gets in your way.
कोई आपके राह के बीच में आता है.
Somebody says something to you.
कोई आपको कुछ कह देता है.
Where's your maitri go?
फिर आपकी मैत्री कहाँ जाती
है? You just feel annoyed immediately.
तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है.
Quickly just changes from maitri to irritation.
और तुरंत मैत्री से गुस्सा या चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है.
So meditation can change your mental state, but you can't keep it.
तो ध्यान साधना आपकी मानसिक अवस्था बदल सकता है लेकिन वो कायम नहीं रख सकता.
Meditation is not enough.
ध्यान साधना ही पर्याप्त नहीं है.
Even these very very positive states are not enough.
बहुत ही सकारात्मक अवस्था उससे निर्माण होती है लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है.
As soon as you stop making an effort, back come the hindrances.
जैसे ही आप प्रयास करना बंद करते हैं तो आपकी जो बाधाएं हैं वो आ जाती हैं.
As soon as you stop making effort, you fall into unskillful actions.
जैसे ही आप प्रयास करना बंद करते हैं तो आप अकुशल कृति में आ जाते हैं.
So meditation can lift you up, but it can't keep you up.
तो ध्यान साधना आपको ऊंचा उठाती है लेकिन ऊंचा ही नहीं रख सकती.
It's a bit like jumping off the ground.
जैसे कि जमीन से कूदना.
When you're off the ground, you think, look, I can fly.
तो जैसे आप कूद कर जमीन हवा में आ जाते हैं लगता है कि अभी उड़ूंगा मैं.
But down you go again.
लेकिन आप तुरंत नीचे चले जाते हैं.
So you need to keep making an effort.
तो इसलिए आपको प्रयास करते रहना पड़ता है.
It's very very important to do meditation.
तो ध्यान साधना करना बहुत महत्व की बात.
Shila is very very important.
शील बहुत ही महत्व का.
Dana is very important.
दान बहुत महत्व का.
But they're not enough.
लेकिन वो पर्याप्त नहीं है.
They don't create a permanent change.
उससे पक्का बदलाव नहीं आता.
Now this is something very very important about the Buddha Dhamma.
तो बुद्ध धर्म के बारे में ये बहुत महत्व की बात.
It's something different about the Buddha Dhamma from most other religions.
बाकी धर्मों से यही बात बौद्ध धर्म की अलग है.
In the Buddha Dhamma we say that these wonderful states of meditation are good.
हम कहते हैं बुद्ध धर्म में कि ये ध्यान साधना की बहुत ही सुंदर ऐसी स्थितियां हैं जो बहुत अच्छी है.
But they're not enough.
लेकिन उतनी ही पर्याप्त नहीं है.
They're not what you're really aiming for.
और यही आपका ध्येय नहीं है.
Because as soon as you stop making an effort, back you come.
क्योंकि जैसे ही आप प्रयास करना बंद कर देते हैं आप पीछे चले जाते हैं.
Sometimes you get very great meditation teachers.
कभी कभी बहुत ही महान ध्यान साधना के गुरु आते हैं.
They can teach you how to experience Brahman and so on.
और वो आपको सिखाते हैं कि ब्रह्मा की अवस्था का कैसा अनुभव करें वगैरह.
But then, well, they preach caste as well.
और वो उसके साथ में फिर जाति भी सिखा देते हैं.
So in other words, they can experience those states, but their actions are unskillful.
तो दूसरे शब्दों में इतनी ऊंची अवस्था का वो तो अनुभव कर सकते हैं लेकिन उनकी कृति जो है वो अकुशल होती है.
So for Buddhism, this is not enough.
तो इसलिए बुद्ध धर्म में इतना ही पर्याप्त नहीं.
It's important, but it's not enough.
ये महत्व का है लेकिन पर्याप्त नहीं है.
It's a bit like a farmer looking after his land.
जैसे कोई किसान अपनी खेती की तरफ देखता
है. I live in England, up in the mountains, in the countryside.
तो मैं इंग्लैंड में एक पर्वतीय प्रदेश में रहता हूँ.
Dharmashali lives with me.
धर्मशाली मेरे साथ रहते हैं.
And we live in the middle of a sheep country.
और हम ऐसी जगह पर रहते हैं कि हमारे चारों तरफ वो जो क्या बोलते हैं उसको भेड़िए जो है वो रहते हैं.
Lots and lots of sheep.
अब बहुत सारे भेड़े उधर रहती
है. All the way around our house, there are sheep.
हमारे घर के चारों तरफ जो मेंढी है वो रहती है.
Sometimes I wake up in the morning and I look out the window.
तो सब कभी मैं अपने सुबह उठता हूँ खिड़की से बाहर देखता हूँ
And there's a sheep looking in through the window at me.
और फिर बाहर से जो भेड़ है वो मेरे तरफ देखती है खिड़की से
So I have to communicate, to give communication exercises with the sheep.
तो फिर वो भेड़ के साथ में मैं एक संपर्क सवाल कर लेता हूँ
And then I do the words.
और फिर मैं वो शब्द बोलता हूँ
I say, baa.
तो मैं भी कहता हूँ baa.
And the sheep says, baa. So communication.
तो इस तरह से संपर्क चालू हो जाता है
Anyway, I live in the middle of a farm.
तो इस तरह से खेतियों के बीच में मैं रहता
हूँ in that part of the United Kingdom, you get a particular sort of weed that grows.
तो हमारे उस United Kingdom के उस क्षेत्र में एक खास कुछ घास उगती है
And it's very prickly, so we call it a thistle.
तो वो थोड़ी सी कांटे भरी होती है
And the sheep can't eat it, so it spoils the field.
तो ये भेड़ है उसको खा नहीं सकती इसलिए वो उससे खेत जो है खराब हो जाते
So the farmer fights a battle with these thistles.
तो ये जो विसल है उससे ये जो घास है उसको तोड़ने के लिए किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ता
है Every year he fights this big battle with the thistles.
और इन thistles के साथ में वो किसान जो है बड़ा अपने युद्ध करते हैं
He goes and he cuts them down.
वो जाते हैं उनको तोड़ देते हैं
But what happens?
तो क्या होता है
Next year, up they come.
अगले साल फिर वो खड़े हो जाते
हैं And he comes, he says, I just can't get rid of thistles from my field.
और वो फिर आते हैं वो देखिए मेरे खेत से मैं इनको बाहर ही नहीं कर सकता
What shall I do?
मैं क्या करूं
And then he goes and cuts them down again.
फिर जाते हैं फिर उनको काट देते हैं
Back they come.
और फिर वो खड़े हो जाते हैं
So why do they come back?
तो ये वापस क्यों आते हैं?
Because the roots are not touched.
क्योंकि उसके जो जड़ है उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया
गया. You can cut off the top, but you're not getting at the root.
आप ऊपर ऊपर से तो काटते हो लेकिन उसकी जड़ें आप नहीं काट रहे हो.
And with that particular plant, up come the plant all over again.
और फिर अगर जड़ नहीं काटते हैं तो पेड़ उगते ही रहेगा.
So that's like Shila Samadhi. Dhanashila and Samadhi.
तो ये दानशीला समाधि की ऐसी अवस्था है
They cut down the hindrances.
तो ऊपर से जो बाधाएं हैं उसको तो वो काट देते हैं
They get rid of unskillful action.
जो अकुशल कर्म है कार्य है उसका तो वो निकाल देते हैं
So you come back from your retreat.
तो आप अपने शिविर से बाहर आते हैं
You say, look at me, no hindrances, no unskillful action.
तो शिविर से आते ही बोलते कि देखो अभी कोई बाधा नहीं रही है कोई अकुशल कर्म मेरे पास नहीं बचा है
What a beautiful field I've got.
कितना अच्छा खेत है मेरा
I can have so many sheep on my field now.
अभी बहुत सारे भेड़े मेरे इस खेत में रहेंगी
But the roots have not been touched.
लेकिन उस खेत में जो जड़े है उसको अभी तक नहीं काटा गया
Up come the hindrances again.
और फिर से ये बाधाएं खड़ी हो जाती हैं।
Up comes unskillful action again.
और फिर से ये अकुशल कृतियां ऊपर आती हैं।
So we have to get right down into the roots of the problem.
और इस समस्या के जड़ तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है।
We have to go much deeper and pull up the roots.
और बहुत गहराई में जाके इसकी जो जड़ें हैं उसे हमें उखाड़ना होता है।
So what are those roots?
तो ये जड़ें कौन सी हैं?
What are the roots for the hindrances? The roots for unskillful action.
तो ये अकुशल जो कृति है और ये जो बाधाएं हैं उसकी जड़ें क्या हैं?
How do we get rid of those roots?
और इन जड़ों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं?
Now this is very very deep.
तो ये बहुत ही गहरी बात है।
This is the essence of the Dhamma we're going to hear today.
तो आज हम धम्म का एक सार सुनने वाले हैं।
So I'm not going to make so many jokes.
तो आज मैं बहुत ज्यादा जोक नहीं करूंगा।
I'm not going to imitate more sheep.
और ज्यादा भेड़ों की नकल नहीं करूंगा
So you have to put on your seat belt.
तो अभी अपने जो पट्टे हैं बांध लीजिए
Put on your crash helmet.
अभी हेलमेट अपने सिर में डाल लीजिए
Put your head down, straight ahead.
और सीधा देखिए आगे
So how are we going to understand this? What the roots are?
तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसकी जड़ें कौन सी है
Well, I was thinking about this in terms of caste.
तो मैं इसको जाति के रूप से देख रहा हूँ
You know, caste is for us the worst problem that we face in India.
तो भारत में जाति ये जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं.
The caste is like hindrances and unskillful action congeals together.
तो जाति ऐसी बात है जिसमें मन की ये बाधाएं और अकुशलताएं सब एक जगह आई हुई
है. It's like a great bundle, a great ball of baked unskillfulness.
तो एक तरह से बहुत बड़ा ऐसा गोला है जो पका हुआ है कुशलता से.
So if we can understand what makes caste happen, we can understand what the root of the problem is.
तो अगर जाति कैसे निर्माण होती है इसको अगर हम देखेंगे तो समस्या क्या है ये हम देख पाएंगे.
Baba Sahib says caste is a notion, a state of mind.
Baba Sahib कहते हैं कि जाति ये मन की धारणा है.
So it's a notion in the mind.
तो ये मन में बनाई हुई बात है.
It's a state of the mind.
ये मन की स्थिति है.
So how did the mind of India get like that?
तो भारत का मन ऐसे कैसे बना?
Well, of course, we can answer that from a historical point of view.
अभी ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसका जवाब दे सकते हैं.
I think we know fairly well now how caste came into existence.
अभी हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जाति कैसे निर्माण हुई.
I'm not going to tell you all that. You know it already.
तो आप सब ये जानते हो, मैं आपको और नहीं बताऊंगा.
But broadly you could say that certain forces in society created it for their own benefit.
तो हम ये जानते हैं कि समाज के कुछ तत्वों ने अपने लाभ के लिए ये जातियां बनाई.
It suited some people in society to be seen as the top.
तो कुछ लोगों को अपने आप को समाज के ऊपर रखने के लिए ये पद्धति अच्छी है.
So they created a whole theory, a whole system that kept them at the top.
तो उन्होंने इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई है और पूरी सिद्धांत बना दी है ताकि वही ऊपर रहे.
But the strange thing is, even though it was to the advantage of those people, everybody else believes in it.
अभी भले ही केवल उन लोगों के लिए ये फायदे की बात रही, लेकिन हर एक ने उस पर विश्वास रखा.
This is very strange, isn't it?
और ये बड़ी विचित्र बात.
Even though most people are oppressed by the caste system, they still believe in it.
तो बहुत सारे लोग इस जाति व्यवस्था की वजह से उनका शोषण होता है, फिर भी वही लोग उस पर विश्वास रखते हैं.
How did it get into the minds of pretty well everybody in India?
तो भारत के हर एक के मन में ये कैसे घुस गया?
Well, obviously, historically, the Brahmins, it has to be said, they created this system.
तो अभी ऐतिहासिक रूप में कहेंगे तो ब्राह्मणों ने इस पद्धति को निर्माण किया.
But actually everybody believes in it.
लेकिन हर एक ने उस पर विश्वास रखा.
Every caste oppresses another.
हर जाति दूसरे जाति को पर अत्याचार करती.
Every caste looks down on another.
हर जाति दूसरे जाति को अपने से नीचा समझती.
Most caste atrocities are not from the highest caste to the lowest.
अभी बहुत सारी जाति के जो अत्याचार होते हैं बहुत ऊंची जात बहुत नीचे जात वालों पर करते हैं, ऐसा नहीं.
They done amongst the Dalit people.
और ये अत्याचार जो है दलितों के बीच में ही ज्यादा होता है.
Among the Bahujan.
और बहुजन लोग जो.
That's where the atrocities happen.
और यहीं पर ये आपस में ये अत्याचार होते हैं.
So everybody buys caste.
तो हर एक जो है इस जाति के सिद्धांत को ले लेता है.
So even though it hurts everybody, everybody buys it.
हर एक को इससे तकलीफ होती है लेकिन सभी इसी पे विश्वास रखते हैं.
So how did that idea of caste get into the mind of India?
तो भारत के मन में ये जाति की संकल्पना कैसे आ गई?
It's a bit like a poisonous crop.
जैसे कि ये कोई बहुत ही विषैला फसल हो.
You know, a bit like opium maybe.
जैसे कि गांजा है.
Opium which poisons people's experience.
जैसे अफू है, अफू लोगों के अनुभव में एक तरह से विषैला होता है.
So there is the crop, the poisonous crop.
तो जैसे कि ये बहुत ही विषैला फसल है.
How does it grow?
तो ये कैसे बनता है?
Well, of course, a farmer plants it.
तो निश्चित ही जो किसान है उसके बीज बोता है.
A farmer goes round, he plants the seed.
ये किसान जो है इधर उधर खेत में घूमता है और वो बीज को बो देता है.
But that isn't the only factor.
लेकिन यही एक बात नहीं है.
The soil has to be right.
उसके लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए.
If the soil isn't right, the seeds will not grow.
अगर जमीन अच्छी नहीं है तो ये बीज जो है वो नहीं उगेंगे.
So the soil of the mind was right.
तो जो जमीन है वो अच्छी नहीं है.
So therefore caste could grow.
और इसलिए जो है ये जाति बढ़ सकी.
So the soil of the mind of people in India was right. And that enabled caste to grow.
और जो भारत की जो जमीन है इसके लिए अच्छी थी इसलिए जाति जो है वो बढ़ गई.
So what is it about the soil of the mind that makes the evil system of caste grow?
तो भारत की जमीन में ऐसा क्या है कि ये जाति की जो बुरी व्यवस्था है यहाँ पर बढ़ गई?
No, it's not just India.
अभी ये केवल भारत ही नहीं है.
India has, I think, the worst and most oppressive longest surviving social system in the world.
तो भारत में ये सबसे अत्याचारपूर्ण और सबसे दीर्घकाल चली ये ऐसी व्यवस्था है.
There's nothing like caste anywhere else.
अब दुनिया में जाति जैसा और कुछ कहीं नहीं है.
But every country has its own forms of oppression.
लेकिन हर देश में अपने अत्याचार के अपने अपने तरीके हैं.
Inhumanity, oppression are all over the world.
ये अमानवीयता जो है और शोषण जो है दुनिया में सभी तरफ.
Yes, there's a particularly evil form they take in India.
अभी भारत में उसका एक अपना एक बुरा तरीका है.
But all kinds of inhumanity and oppression are found everywhere.
तो सभी प्रकार की जो है अमानवीयता है और शोषण है सारी दुनिया में आप देखते हैं.
Well, for instance, I come from the UK.
जैसे मैं यूके से आया हूँ.
Well, until very recently, UK still had. Can you please? The UK still had a class system.
तो यूके में अभी भी वो वर्ग की व्यवस्था है.
So people from one class didn't associate with people from another.
एक वर्ग के ऊपर के वर्ग के लोग जो है ये दूसरे वर्गों से संपर्क नहीं रहे.
It wasn't like caste, but it's still a system of graded inequality.
अभी ये जाति जैसा नहीं है, फिर भी ये एक क्रमिक जो उच्च नीचता है उसमें.
So for instance, Dharmashalin and I come from different classes.
तो अभी धर्मशालीन और मैं अलग अलग वर्गों से आते हैं.
I won't tell you who is higher and who is lower. But traditionally, not in our generation, but two generations back, we wouldn't have associated with each other.
लेकिन पारंपरिक रूप से देखेंगे हमारे पीढ़ी में तो नहीं, लेकिन आज के पहले वाले पीढ़ियों में हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते.
But that system was there in England too.
तो इंग्लैंड में भी ऐसी कुछ व्यवस्था थी.
So and also in England we have racism.
इंग्लैंड में वर्ण व्यवस्था भी है.
You know, the majority population are white, like me.
जैसे मेरे जैसे गोरे लोगों का ज्यादा वहाँ पर लोक संख्या है.
But there are many people from Africa, many people from India.
अब वहाँ पर अफ्रीका से और भारत से बहुत सारे लोग आए हुए हैं.
The white people have a lot of prejudice against the black people.
और जो गोरे लोग हैं काले लोगों के बारे में उनके मन में बहुत सारे गलतफहमियां.
It's not so bad nowadays, but it's still there.
अभी आजकल इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी है.
So that form of oppression is there in society in England.
और इंग्लैंड के समाज में ये शोषण है.
So I heard the other day that in London, if you're black, you're 5 times more likely to be stopped by the police than if you're white.
तो लंदन में मैंने सुना है कि अगर आप काले आदमी हो तो पुलिस द्वारा आप 5 बार ज्यादा संभावना है आपको पुलिस द्वारा रोकने की गोरे इंसान की तुलना.
So these forms of discrimination, oppression are there everywhere in the world.
तो इस तरह के जो शोषण की व्यवस्था है दुनिया में सब तरफ है.
You know that in America, of course, there's a lot of racial tension.
अमेरिका में बहुत सारा जो वर्ण का
That's why it's so wonderful that Barack Obama has been elected president.
और इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि अभी बराक ओबामा अध्यक्ष है.
And I hope that happens here in India.
और मुझे आशा है कि भारत में भी ऐसा हो.
I hope it's not too long before there's a Buddhist prime minister.
मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए जब बौद्ध पंतप्रधान.
Why not? Why shouldn't we have a Buddhist Prime Minister?
क्यों नहीं, बौद्ध पंतप्रधान क्यों नहीं हो सकता?
It will happen. One day it will happen.
एक दिन आएगा जब यह होगा.
I predict it will happen.
मैं ये भविष्य बताता हूँ.
I hope I'm alive to see it.
अब मुझे आशा है कि मैं जिंदा रहूँगा वो बात देखने के लिए.
So yes, even in America, this land of the free, there's a lot of oppression.
तो जहाँ स्वतंत्र लोगों की जमीन कहते हैं अमेरिका में, वहाँ पर भी ऐसा शोषण है.
In Africa, quite recently, we've seen tribal violence.
अफ्रीका में अभी में बहुत बड़ा ऐसे वहाँ के आदिवासियों के बीच में हिंसा देखी.
Then you get violence between different religious groups.
अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में हिंसा देखते हैं.
You know, in India too, there's violence of that kind.
अभी धर्म के नाम पर भारत में भी ये हिंसा हम देखते हैं.
So all over the world, people discriminate against each other.
तो सारी दुनिया में लोग एक दूसरे के बीच भेद करते हैं.
In India, I think it takes the most rigid and difficult to change form.
तो भारत में बहुत ही पक्का और बदलने के लिए बहुत ही कठिन ऐसा ये व्यवस्था हो जाती
है. It's such an ancient system. It's very, very difficult to change.
ये काफी लंबे समय से साल सदियों से चलती ये परंपरा है, इसलिए उसको तोड़ना बहुत कठिन है.
But all over the world, people behave towards each other with inhumanity.
लेकिन पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं.
Why?
ऐसा क्यों?
There's something about the soil of the human mind that makes this happen easily.
तो इंसान के मन की भूमि ही शायद ऐसी कुछ है कि जिसकी वजह से ये सब होता है.
So the Buddha says the problem lies deep in our minds.
तो बुद्ध कहते हैं कि जो समस्या है हमारे मन के गहराई में.
He says the problem is our ignorance.
वे कहते हैं कि समस्या है हमारी अज्ञान.
We don't really understand this life.
हम सही में इस जीवन को नहीं समझते.
So the Buddha is saying, here we are, we're sitting here.
तो बुद्ध कहते हैं कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ बैठे हैं.
We're looking around.
हम चारों तरफ देख रहे हैं.
We've got a certain idea about ourselves and about this situation.
हमारे मन में स्वयं के बारे में और इस परिस्थिति के बारे में कुछ कल्पनाएं हैं.
But the Buddha says we make three big mistakes about this life.
तो बुद्ध कहते हैं कि हम इस जीवन के बारे में तीन बड़ी गलतियां करते हैं.
First of all, we think that there's real permanence somewhere.
तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो पक्का नित्य ऐसी बात है.
We think that there's some things in life that cannot change.
हम ये सोचते हैं कि जीवन में ऐसी कोई बात है जो बदलती नहीं.
We think that life is permanent.
हम ये सोचते हैं कि जीवन नित्य है.
Yes, there's a bit of change on the surface, but underneath, it's permanent.
लेकिन ऊपर ऊपर कुछ तो परिवर्तन दिखता है, लेकिन अंदर जो है वो पक्का है.
So that's the first mistake we make, the Buddha says.
तो बुद्ध कहते हैं कि ये पहली गलती हम करते हैं.
We think that there's things that are permanent.
हम ये सोचते हैं कि ये चीजें जो है नित्य है.
The second mistake we make is closely connected with that.
दूसरी जो गलती हम करते हैं ये इसी से और करीब से संबंधित है.
We think that we are permanent.
हम ये सोचते हैं कि हम स्वयं नित्य है.
We think that we will last forever.
हम ये सोचते हैं कि हम नित्य अनंत काल तक जीवित रहें.
Of course, we know very well that this is put in the old religion in terms of the idea of Atman.
अब आप ये जानते हो कि पुराने धर्मों में इसी को आत्मा के सिद्धांत में रखा गया.
In that old religion, we're taught that there's something inside us that goes on forever.
तो हमने देखा है कि हमारे अंदर की ऐसी कोई बात है जो अनंत काल तक चलती ही रहती है.
And yes, this is called the Atman.
और इसी को आत्मा कहते हैं.
Sorry, can we no photographs, please? It's disturbing to everybody. Yeah. Thank you. Sorry. Yes, we're very, very serious point here, so we need full concentration.
तो ये हम गंभीर मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो आप सभी का पूरा ध्यान होना चाहिए.
So we think that there's something inside us that lasts forever.
तो हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात है जो अनंत काल तक रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती.
We don't even really realize that we're going to die.
हम सही में इस पर विश्वास नहीं रखते कि हम कभी मरने वाले हैं.
Yes, Kumarajiv is 39, but he's not going to stay 39.
अभी कुमार जी 39 के हैं, तो 39 के ही नहीं रहेंगे.
So we don't even really realize that our own lives are going to end.
हम सही में इस बात पर नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन समाप्त होने वाला है.
If we do think of what happens after death, we think of ourselves going on.
तो अगर
If we do think of ourselves after death, then we think of it as us going on.
तो अगर हम ये सोचते हैं कि जिन मरने के बाद भी कायम रहने वाला है, तो हम जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे.
So then that's the second mistake we make.
तो ये हम दूसरी गलती करते हैं.
We think there's something permanent here.
तो हम ये सोचते हैं कि अंदर कुछ तो नित्य है.
Something that doesn't change.
ऐसी कोई बात जो बिल्कुल नहीं बदलती.
Something that's really important.
और वो ऐसी बात है जो बहुत ही महत्व की है.
We think that we are the center of the universe.
हम ये सोचते हैं कि हम ही विश्व का केंद्र है.
That the whole universe revolves around me.
जैसे कि सारी दुनिया मेरे ही चारों तरफ घूमती है.
So this is a third mistake we make.
अब तीसरी गलती हम करते हैं.
We think that it is really possible to arrange life so that we're completely happy.
तो हम ये सोचते हैं कि जीवन को हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम पूरी तरह से सुख हमें मिलेगा.
We think it's possible to experience heaven.
हम ये सोचते हैं कि स्वर्ग का अनुभव यहाँ संभव
इफ वी फाइंड द राइट हस्बैंड द राइट वाइफ
अगर सही पति मिले या सही पत्नी मिले तो
दैट्स व्हेन यू आर यंग दैट्स व्हाट यू बिलीव
जब आप युवा होते हैं तो यह आप भरोसा रखते विश्वास
देन इट विल बी परफेक्ट
तब सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचते
When you're married, you think if only your wife or your husband would change.
अब जब शादी हो जाती है तो ये सोचते कि मेरी ये पत्नी या पति बदलेगा तो अच्छा होगा
Then everything would be perfect.
फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा
If you had promotion, then everything would be perfect.
जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो लगता है कि हाँ तब सब ठीक हो जाएगा
If you got a bigger television set, then everything would be perfect.
थोड़ा सा बड़ा टीवी घर में लाओगे तो सब ठीक हो जाएगा
If you move from a two-wheeler to a four-wheeler, then everything would be perfect.
अभी दो चक्के वाली गाड़ी है चार वाली आएगी तो
So we've always got this idea that we can arrange life so that we're completely happy.
तो हमेशा हमारे मन में यही कल्पना होती है कि जीवन में और कुछ हम बना देंगे तो हम पूरे स्वर्ग का आनंद लें.
So these three mistakes are what everything else comes from.
और ये तीन गलतियां हैं जिसकी वजह से बाकी सब समस्याएं निर्माण होती हैं.
We think everything is permanent.
हम सोचते हैं कि सब कुछ नित्य है
सो वी डोंट एक्सेप्ट द चेंज ऑफ थिंग्स
तो इसलिए जो बदलाव है वस्तुओं में उसको हम स्वीकारते नहीं
दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद कास्ट इट्स वेरी ऑब्वियस
तो जाति के बारे में भी यही बात आप देखते हैं
कास्ट हैज बीन फॉर 2000 इयर्स
अभी 2000 सालों से ये जाति है
बट वी बिलीव इट हैज टू गो ऑन इट इज परमानेंट
लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसको आगे बढ़ते रहे चलते रहना चाहिए ये नित्य है
इट्स गिवन बाय गॉड
ये ईश्वर से आई हुई है
इट्स इटर्नल
ये अनंत है
सो वी डोंट रियलाइज दैट इट कैन चेंज
लेकिन इसलिए हम ये भरोसा नहीं करते
वी डोंट थिंक दैट सोसाइटी कैन चेंज
हम ये नहीं सोचते कि समाज बदल सकता
वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी
हम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते
सो बिकॉज वी थिंक दैट देयर इज रियल परमानेंस वी डोंट एक्सेप्ट चेंज वी कांट ग्रो
तो अगर सही में ऐसा पक्का कुछ है तो हम बदलेंगे नहीं हमारा विकास नहीं होगा
बिकॉज वी बिलीव दिस इन इटर्नल सेल्फ वी आर सेल्फिश
जब हम एक अनंत ऐसा स्व या आत्मा हमारे अंदर है तो हम एक तरह से आत्मवादी बनते स्वार्थी बन जाते
वी थिंक वी आर दिस
तो हम सोचते कि मैं ये हूँ
I am this caste, I am that caste.
मैं इस जाति का हूँ मैं उस जाति का हूँ
I'm English, I'm Indian.
मैं अंग्रेजी हूँ मैं भारतीय हूँ
This is who I am.
ये मैं हूँ
But yes, those are just mental constructions.
तो ये सब जो है मन की बनाई हुई बातें
Because we believe that we can be really happy in this life, but we do things, we do evil things, that will bring us what we think will make us happy.
तो हम ये भरोसा रखते हैं कि इसी जगह पर हम पूरा सुख पा सकते हैं इसलिए हम बातों को करते रहते हैं हम बुरी भी बातें करते हैं ताकि मैं सुखी हूँ
If you're in a good social position, you force other people down so that you can be happy.
तो आप अगर सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी ऊंची है तो आप बाकी लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ऊंचे रहें आप सुरक्षित रहें
If you're in a bad social position, you harm others to get out of it.
अगर आप बुरी सामाजिक दर्जा आपका है तो आप लड़ाई करोगे ताकि आप उससे निकल सकें
सो आवर बिलीफ दैट वी कैन रियली क्रिएट परमानेंट हैप्पीनेस लीड्स अस टू डू मच इवन
तो हमारा ये विश्वास कि यहीं पर हम नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं ये हमें आगे बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है
दीज थ्री आर द रूट्स Of all our hindrances, all our unskillfulness.
ये तीनों ही हमारे सभी बाधाओं के और सभी बातों के जड़ हैं.
From them comes craving, comes hatred.
इसी से तृष्णा निर्माण होती है, इसी से द्वेष निर्माण होता है.
And from craving and hatred comes all our unskillful action.
और इस तृष्णा से, द्वेष से सभी अकुशल कृतियां निर्माण होती हैं.
Then these become solidified in a social system.
और ये फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था में मजबूत हो जाती है
The caste system is Krishna and Dvesh solidified.
तो जाति व्यवस्था मतलब तृष्णा और द्वेष ये दोनों का पक्का बनना है
And it's ignorance, of course.
और निश्चित ही इसके पीछे अज्ञान है
So if we want to pull up the roots of caste and all other kinds of inhumanity, we've got to get rid of these three mistakes.
तो अगर इस जाति को जड़ से उखाड़ना है और मानव में जो भी अमानवीयता है उसको अगर जड़ से उखाड़ना है तो इन तीन गलतियों से हमें मुक्त होना चाहिए
Then we can be at peace.
और फिर हम शांति का अनुभव कर सकते
Then we can live at peace with others.
और फिर हम दूसरों के साथ शांति से रह सके
This is the Buddhist answer to suffering.
और ये बौद्धों का दुख को दिया हुआ जवाब
We need to see three things.
हमें तीन बातें देखना जरूरी है
First of all, we need to see that everything is impermanent.
सबसे पहले हम लोगों को इस बात को देखना जरूरी है कि सब कुछ अनित्य है.
Everything comes into being, passes away.
जो कुछ भी निर्माण होता है नष्ट होता है.
We arrived just a few days ago. This retreat came into being.
हम कुछ दिन पहले यहाँ आए, ये शिविर अस्तित्व में आया.
Just in 2 days' time, we'll go our separate ways.
अभी दो दिन के बाद में हम अपने अपनी जगह चले जाएंगे.
This retreat will be over.
और ये शिविर समाप्त होगा.
It'll just be a memory.
और ये केवल स्मृति रहेगी.
Everything is like that.
हर चीज ऐसी ही होती है.
I started speaking just a few minutes ago.
कुछ मिनटों पहले मैंने बोलना शुरू किया.
In a few minutes, I'll stop.
और कुछ मिनटों में मैं बंद करूंगा.
My words, I hope, will have some effect.
मेरे शब्द मुझे आशा है कुछ परिणाम करेंगे.
But the talk will be over.
लेकिन ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा.
Everything is like that.
हर चीज जो है ऐसी ही होती है.
Even this earth that we stand on.
अब जिस भूमि पर हम बैठ खड़े होते हैं उसकी भी ऐसी बात है.
This earth is not something permanent.
ये भूमि ऐसी नहीं कि कोई जो बहुत नित्य है.
I'll give you a very striking example.
ये बहुत ही मैं पक्का एक अच्छा उदाहरण देता हूँ.
You know where India is.
आपको मालूम है भारत कहाँ है?
At the top there are the Himalayas.
ऊपर में हिमालय है.
So has it always been like that?
तो क्या हमेशा ये ऐसा ही था?
No, it hasn't.
ऐसा ये हमेशा नहीं था.
India is actually like an island.
भारत जो है एक तरह से एक इसको द्वीप था.
And scientists, geologists say that it used to be down in the south.
और जो भूशास्त्रज्ञ जो है वो कहते हैं कि ये दक्षिण की तरफ था.
And it's moving north.
अब ये उत्तर की तरफ जा रहा है.
Right now, India is moving north.
अभी भी ये भारत की जमीन जो है उत्तर की तरफ सरक रही है.
Very, very slowly.
बहुत ही धीमे गति से.
You can't see it, of course.
अब हम नहीं देख सकते.
Otherwise, you'd fall over.
नहीं तो आप गिर जाओगे.
But India is moving.
लेकिन भारत जो है चल रहा है.
It's moving up into Tibet.
और वो तिबेट में घुस रहा है.
So that's what the Himalayas are.
तो इसीलिए हिमालय ऊंचा है.
The Himalayas are where India hits Tibet.
तो हिमालय ऐसी जगह है जहाँ भारत तिबेट को धड़क मारता है.
You know, if you have two things touching, pushing against each other, they buckle like that.
तो देखो कि दो चीजें अगर एक दूसरे को दबाव करती है तो इस तरह से ऊपर जाता है.
So that's the Himalayas.
और ये हिमालय है.
The Himalayas are formed by the impact of India into Tibet.
तो भारत का तिबेट पर जो दबाव है उससे हिमालय बनता है.
Even now the Himalayas are going up.
अभी इस क्षण भी हिमालय ऊंचा ऊंचा हो रहा है.
Because India is still going north.
क्योंकि भारत फिर भी दक्षिण के उत्तर के तरफ सरक रहा है.
So the Himalayas are going up.
तो हिमालय ऊंचा ऊंचा हो रहा है.
Although it's quite strange because at the same time they're going down.
अभी दूसरी भी विचित्र बात है कि उसी वक्त वो नीचे भी जा रहा है.
Because the rock is wearing away.
क्योंकि जो उसके जो पत्थर है वो नष्ट हो रहा
है. The ice and the snow is slowly wearing away the rock.
और जो बर्फ है उसके ऊपर की उस पत्थरों को कम कर रही है.
So this very earth that we stand on is impermanent.
तो ये जिस भूमि पर हम लोग खड़े होते हैं वो स्वयं अनित्य है.
This whole planet came into existence so many billion years ago.
अब कुछ अरबों खरबों सालों पहले ये पूरा जो ग्रह है वो अस्तित्व में आया है.
And astronomers say that one day the sun will explode and it'll burn the earth up.
आप कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन सूरज फट जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी.
So what seems so real, so solid, is really impermanent.
तो जो कुछ भी आप बहुत पक्का देख रहे हो वह भी अनित्य है.
Everything is like that.
हर चीज इसी तरह से.
Your own body.
आपका स्वयं का शरीर देखिए.
You know, here you are now.
अब देखो आप स्वयं यहाँ पर हो.
In your body right now, there's not one cell that you had when you were born.
तो अभी आपके शरीर में वो एक भी पेशी नहीं है, कोशिका नहीं है जो आपके जन्म के वक्त आपके शरीर में.
You got a different body to the one you were born with.
आप जिस शरीर को लेकर जन्म हुआ है आपका उससे आपका अभी का शरीर पूरा अलग है.
If you're my age, you've got not as good a body as you had when you were younger.
अभी अगर आप मेरे उम्र के होंगे तो युवा थे तब जैसा आपका शरीर था वैसा अभी नहीं रहा.
So your body is changing all the time.
तो आपका शरीर जो है हर क्षण बदल रहा है.
So we think of this as something very solid and very real. This is me.
तो हम बोलते हैं कि ये मैं हूँ जैसे कि कोई बहुत पक्का है कोई सच्चा है.
But actually it's changing all the time.
लेकिन वास्तव में ये हर क्षण बदल रहा है.
You look at your mind.
अपने मन की तरफ देखिए.
Even from the beginning of this retreat, see how much your mind has changed.
तो आप इस शिविर की शुरुआत से ही सोचिए कि आपका मन कितना बदला.
So the Buddha says, If you don't accept impermanence, you don't accept life.
तो बुद्ध कहते हैं कि अगर इस अनित्यता को आप नहीं स्वीकारते हैं तो आप जीवन को नहीं स्वीकार।
You don't really know who you are, you don't know what the world is.
आप नहीं जानते हो कि आप कौन हो और दुनिया कौन
है। You will make big mistakes.
आप बड़ी गलतियां करोगे।
Baba Sahib says that impermanence means non-attachment.
तो बाबा साहब कहते हैं कि अनित्यता इसका मतलब अनासक्ति।
If you realize that everything is impermanent, you don't attach to it.
अगर आप ये जानते हो कि हर चीज अनित्य है तो किसी को पकड़ के रखने की इच्छा आप नहीं रखोगे।
You watch it come, you watch it go.
आप देखोगे ये आ रहा है और जा रहा है।
Attachment is trying to stop impermanence.
आसक्ति पकड़ के रखना मतलब इस अनित्यता को पकड़ के रखने की कोशिश करना।
But it's like trying to pick up water.
तो ये ऐसा है जैसे कि आप हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश करते हैं।
You know, I say to somebody, go and get that river.
तो मैंने कहा किसी को जाओ उस नदी को लेकर आओ।
And they go with their hands, they try to pick up the river.
और जाते हैं और हाथों से नदी को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
The river flows away.
नदियां बहती चलती हैं।
There's a famous Greek philosopher at the time of the Buddha who said, you cannot step into the same river twice.
तो एक बहुत बुद्ध के जमाने में बहुत बड़े ऐसे ग्रीक दार्शनिक थे, वो कहते हैं कि एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं जा सकते हो।
The first time you step into it, it's one river.
तो पहली बार जब उस नदी में पैर आपने रखा था तो वो एक नदी थी।
But all that water has flowed away by the time you step in a second time.
फिर से दूसरा कदम जब आप रखते हो तब तक जो पानी था वो सब चला गया।
So when we try to stop the flow, then we suffer.
तो इसलिए इस प्रवाह को जब रोकने की हम कोशिश करते हैं तो हम दुख होता है।
So yes, the Buddha says, let go.
तो बुद्ध कहते हैं इसको जाने दीजिए।
Accept impermanence.
इस अनित्य को स्वीकारिए।
If you accept impermanence, you'll be able to grow.
तो अगर आप अनित्य को स्वीकारते हैं तो आप आगे बढ़ सकोगे।
You know, if you say, well, I am this caste, I belong to this caste.
तो आप अगर कहते कि नहीं, मैं इस जाति का हूँ।
You stop yourself.
तो आप अपने आप को रोकते हो।
You can't grow.
तो आप विकास नहीं होता।
You can't become something more than that.
आप इससे और ज्यादा नहीं बन सकते।
This is what Baba Sahib was saying.
और यही बाबा साहब कहते थे।
He's saying, don't think of yourself as one particular caste.
तो वो कहते हैं कि अपने आप को हम किसी एक जाति के हैं ऐसा मत सोचो।
This is the second of the Buddha's messages.
तो ये दूसरा है बुद्ध का संदेश।
Let go of an idea of yourself as something fixed and permanent.
तो अपने स्वयं के बारे में कोई पक्की कल्पना अगर आपकी है तो उसको छोड़ दो।
There's nothing about us that's permanent.
हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं जो नित्य है।
You know, we do a meditation practice sometimes.
तो कभी हम ध्यान साधना करते हैं।
Where you look at yourself.
आप स्वयं के बाहर तरफ देखते हैं।
You look at the earth in your body.
आपके शरीर में जो ये पृथ्वी का धातु है उसके तरफ देखते हैं।
Here's the skin, this bone and so on.
तो ये चमड़ी है, उसके अंदर हड्डियां हैं।
But all of that is changing. All of that will go one day.
लेकिन एक दिन ये सब चला जाएगा, ये सब अभी बदल रहा है।
There's water in the body.
हमारे शरीर में पानी है।
There's blood.
हमारे शरीर में खून है।
But that blood will dry up one day.
एक दिन ये खून सूख जाएगा।
And all the time that blood is changing.
और हर क्षण ये खून जो है बदल रहा है।
There's fire in the body. There's warmth.
तो हमारे शरीर में अग्नि है जो उष्णता है।
One day that will go cold.
और एक दिन ये ठंडा हो जाएगा।
There's air in the body coming and going every moment.
हर क्षण आपके शरीर में हवा है जो आ रही है और जा रही है।
So there's nothing about your body that's permanent.
और हमारे शरीर की ऐसी कोई बात नहीं जो पक्की है।
When you look at your mind, you see your mind too is completely changing all the time.
जब आप मन की तरफ देखोगे अपने, आप देखोगे कि मन हर क्षण बदल रहा है।
So if you really accept this, you can grow.
तो अगर इस बात को सही में आप पहचानते हो, स्वीकारते हो, तो आप आपका विकास।
You cannot find anything permanent in yourself.
आपके स्वयं के अंदर आप कोई भी पक्का नहीं देख सकते।
If you don't believe me, think.
अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं रखते हो तो खुद सोचो।
Look.
देखो।
Look inside yourself, see if you can find anything that doesn't change.
तो आप खुद के अंदर देखने की कोशिश करो और देखो कि क्या कोई आपको पक्का मिलता है।
And that's something wonderful.
तो ये बहुत सुंदर ऐसी बात।
If there was something fixed in us, well then we'd be stuck.
अगर हमारे अंदर कोई पक्की बात होती तो हम वैसे ही अड़े रहते।
We could never become more than we are now.
हम जितने हैं उससे ज्यादा हम नहीं हो सके होते।
We could never become the Buddha.
हम बुद्ध नहीं हो सके होते।
So, yes, we need to accept that there's no permanent self.
तो इसलिए हमें ये स्वीकारना होगा कि हमें ऐसा कोई पक्का स्व नहीं है।
Then the Buddha says we need to realize, we need to accept that there's nothing in this life that can give us permanent happiness.
तो और एक बात बुद्ध जो कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें नित्य सुख दे सकती.
You can never in this life find fixed permanent happiness.
इस जीवन में आप कभी भी पक्का और नित्य मिलने वाला सुख नहीं पा सकते.
Of course, happiness comes.
निश्चित ही सुख आता है.
Pleasure comes.
सुखद संवेदनाएं मिलती है.
But unhappiness and pain also come.
और उसके बाद में दुख भी आता है और दुखद संवेदनाएं भी आती है.
Where there's a sun, there's a shadow.
जहाँ सूरज है तो छाव भी है.
So life is made up of pain and pleasure.
तो जीवन इसी तरह से सुख और दुख से बनता है.
We can't avoid them both.
और दोनों को हम टाल नहीं सकते.
We cannot avoid some suffering.
और उस दुख को हम टाल नहीं सकते.
We cannot find permanent happiness just in arranging this world.
इस दुनिया को ही थोड़ा सा इधर उधर करके हम लोग पक्का सुख नहीं मिला सकते.
The Buddha says that complete happiness is only to be found in Nibbana.
और बुद्ध कहते हैं कि संपूर्ण सुख केवल निर्वाण में ही मिलता है.
Nibbana is perfect peace.
निर्वाण यह है संपूर्ण शांति.
So these three are what we call in Buddhism the three lakkhanas or lakshanas.
तो बुद्ध धर्म में इनको तीन लक्षण या तीन लक्षण कहते हैं.
This is the essence of the Buddha's understanding.
तो बुद्ध की समझदारी का यह सार है.
Anicca, anatta, anatta. And dukkha.
So anitya, anatta, dukkha.
Or in Sanskrit, anitya, anatman, and dukkha.
Or Sanskrit mein dekhenge to anitya, anatma, aur dukkha.
So if we can understand these three, if we can really understand them, we will be free.
तो अगर इन बातों को सही में हम समझते हैं, तो हम मुक्त हो जाएंगे.
We'll experience nibbana.
तो हम निर्वाण का अनुभव करेंगे.
We'll be completely at peace.
और हम पूरी तरह से शांति का अनुभव करेंगे.
We'll be able to move with life.
हम जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे.
We'll be at peace with others.
दूसरों के साथ हम शांति महसूस करेंगे.
We'll bring peace to others.
और दूसरों के तरफ हम शांति लेकर जा सकेंगे.
We will be ultimately the Buddha.
और अंत में हम बुद्ध बनेंगे.
Seeing these three is prajna.
और इन तीनों को देखना मतलब प्रज्ञा है.
And this is the real and ultimate goal of the Buddha Dhamma.
और ये बुद्ध धम्म का सच्चा और अंतिम ध्येय है.
We're trying to change our minds so deeply that an idea like caste is impossible.
तो हम अपने मन को इतनी गहराई से बदल देंगे ताकि जाति जैसी कोई भी संकल्पना उसमें नहीं घुस सके.
We're trying to change our minds so deeply that we can never possibly fall into inhumanity.
हम अपने मन को इतनी गहराई से बदल देंगे ताकि कभी भी किसी भी अमानवीयता में पड़ने की संभावना ही नहीं रहेगी.
Only then will we really achieve liberty, equality, and fraternity.
और तब जाकर हम सही में समता, स्वतंत्रता और बंधुता प्राप्त कर सकते.
If enough people have prajna, then liberty, equality, and fraternity will abide.
तो अगर सही में इस प्रज्ञा को हम प्राप्त करेंगे तो इस समता, स्वतंत्रता और बंधुता कायम रहेगी.
Otherwise, what will happen is new forms of inhumanity will come.
नहीं हुआ तो क्या होगा कि नए नए तरीके जो अमानवीयता के वो निकलते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे.
So we need wisdom to finally end oppression.
और इसलिए इस अत्याचार को, शोषण को अगर रोकना है तो प्रज्ञा की जरूरत है.
So the question is, how do we develop them?
अभी सवाल है कि इस प्रज्ञा को हम कैसा बढ़ाएंगे.
This is what we need to understand here and what we need to practice.
तो यहाँ हम इस बात को समझना जरूरी है और यहाँ यह आचरण जरूरी है.
So the Buddha says that there are three levels to developing prajna.
तो बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा का विकास करने के तीन स्तर हैं.
First of all, this श्रुतमयी प्रज्ञा.
तो सबसे पहले है श्रुतमय प्रज्ञा.
श्रुतमयी प्रज्ञा
या श्रुतमय प्रज्ञा.
That means the wisdom that consists in hearing.
तो पहली बात है कि ऐसी प्रज्ञा जो सुनने से आती है.
That's what's happening now.
तो ये अभी हो रहा है.
I'm trying to communicate to you the Buddha's fundamental understanding.
मैं आपको बुद्ध की जो मूलभूत समझ है वो आपको बता रहा हूँ.
You're listening.
और आप सुन रहे हो.
You're trying to hear what I say.
मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे सुनने की आप कोशिश कर रहे हैं.
You're trying to understand it in a basic way, I hope.
और जितने मूलभूत तरीके से आप सुन सकते हैं आप कोशिश कर रहे हो.
Well, you need to hear the Buddha's words.
तो आपको बुद्ध के शब्दों को सुनना जरूरी है.
Otherwise, well, you've got no basis for wisdom.
अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रज्ञा की बुनियाद आपके पास ही नहीं है.
So that's where you start.
तो यहां से आप शुरुआत करते
हैं। You start by listening to the Dhamma, studying the Dhamma.
तो आप धम्म को सुन के उसका अध्ययन करके शुरुआत करते हैं।
You read about the Dhamma, you listen to Dhamma talks.
तो आप धम्म की के बारे में सुनते हो, धम्म का प्रवचन सुनते हो।
You learn the Dhamma off by heart.
और फिर आप मुखोद्गत करने की कोशिश करते हैं धम्म।
This is the traditional way. You learn the suttas.
तो यही सूत्र को पढ़ने की, कंठस्थ करने की परंपरा है।
At least you know the lists.
कम से कम ये जो सूची है, ये आप जान सके।
So if somebody says to you, what are the three lakshanas? You know what they are.
तो अगर कोई आपको पूछता है कि तीन लक्षण कौन से हैं, तो आपको बताने आना।
If somebody says, what are the three shiksha? What are the three trainings? You know what they are.
तो त्रि शिक्षा कौन सी है, तीन प्रशिक्षण कौन से हैं, तो आपको बताने आना चाहिए।
शील समाधि प्रज्ञा।
शील समाधि प्रज्ञा।
So you learn the Dhamma.
तो आप धम्म सीखते हैं।
You learn the basis of the Dhamma.
धम्म की जो मूलभूत बुनियाद है, वो आप सीखते हैं।
This is the start of prajna.
और ये प्रज्ञा की शुरुआत है।
For instance, you read the Buddha and his Dhamma.
उदाहरण के लिए आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं।
That's why Baba Sahib wrote it.
और इसलिए बाबा साहब ने उसको लिखा है।
He tried to condense the Dhamma.
उन्होंने धम्म को संक्षिप्त में लाने की कोशिश की।
He tried to take the main points of the Dhamma.
धम्म के जो मुख्य मुद्दे हैं, उसको लिखने की उन्होंने कोशिश की।
So I suggest you read a little bit of the Buddha and his Dhamma every day.
तो मैं सुझाव दूंगा कि बुद्ध और उनका धम्म आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए।
You learn by heart some of the things that he says.
बाबा साहब जो कहते हैं, ऐसी कुछ बातें आप कंठस्थ कीजिए।
Mostly he's quoting from the Buddha.
और ज्यादातर वो बुद्ध के ही उदाहरण देते हैं।
So you make sure you know what the Dhamma says.
तो आप ये निश्चित करते हैं कि आप जानते हो कि धम्म क्या कहता है।
I'm afraid that this is not so common amongst Buddhists in India.
और मुझे बताते हुए खेद होता है कि बौद्ध में, भारत के बौद्धों में ये बात आमतौर पर नहीं मिलती है।
Say, my Bauda home.
वो कहते हैं, मैं बौद्ध हूँ।
Very proud.
बहुत अभिमान है।
So you say, well, please, what is the Eightfold Path?
तो हम पूछते हैं कि भाई अष्टांगिक मार्ग क्या है?
You say, my Bauda home.
तो कहते हैं, मैं बौद्ध हूँ।
What are the Four Noble Truths?
हम पूछते हैं, चार आर्य सत्य क्या है?
My Bauda home. So people don't know the Dhamma.
तो लोगों को धम्म नहीं मालूम।
How can you go for refuge to the Dhamma when you don't know the Dhamma?
अगर आप धम्म ही आपको मालूम नहीं है, तो उस धम्म में शरण कैसे जाते?
How can you go for refuge to the Buddha when you don't know what the Buddha taught?
बुद्ध ने क्या सिखाया, यही आप नहीं जानते हो, तो उस उनके शिक्षा को कैसे आप?
How can you go for refuge to the Sangha when you don't know what the Sangha has practiced?
अभी संघ को शरण आप जाते हो, संघ क्या है यही आपको मालूम नहीं, तो आप कैसे जाओ?
When you don't know what brought the Sangha to their realization.
संघ को अपने प्राप्ति तक क्या लेकर जाता है, यही आपको मालूम नहीं, तो संघ में कैसे जाओ?
You need to know the Dhamma, basic Dhamma.
तो आपको ये जो मूलभूत धम्म है, ये जानना जरूरी है।
You don't need much actually.
आप इसके लिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
You just need a few essential teachings.
आपको कुछ बहुत ही थोड़ी आवश्यक शिक्षाएं मालूम होना जरूरी।
There's a story I tell, many of you know it very well.
आपको मालूम है, आपने से बहुत से लोगों ने मेरी से ये कहानी सुनी होगी।
The Buddha taught some verses.
बुद्ध ने कुछ गाथाएं सिखाई थी।
And he said to his monks, learn these verses and that will take you to enlightenment.
और बुद्ध ने ये गाथाएं अपने भिक्षुओं को सिखाई और कहा कि इन पंक्तियों को पढ़ो या आपको बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा।
So a little later, one of the monks came to him and said, I'm very, very sorry, master, but I can't learn them.
तो एक भिक्षु उनके तरफ आते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैं बहुत ही खेद होता है मुझे, ये मैं कंठस्थ ही नहीं कर पा रहा।
I learn them and then they just go.
मैं उनको कंठस्थ करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ।
So the Buddha said, never mind, just learn one four-line verse.
तो बुद्ध उनको कहते कि कोई बात नहीं, आप ये चार पंक्तियों वाला एक एक गाथा पढ़िए।
So later that monk came back.
और फिर कुछ दिनों से एक बाद वो भिक्षु वापस आता है।
No, master, still no luck.
और कहते कि भगवान, अभी भी कुछ नहीं जम रहा है।
My mind is like a sieve.
मेरा मन like a
sieve.
Sieve.
You know, for straining water. Yeah.
तो जो छन्नी है, जिसमें से चाय छनते हैं, उस तरह का है।
Water just goes straight through it, nothing remains.
उसमें जैसे पानी डालते ऊपर से वो नीचे बह जाता है, कुछ भी नहीं बचता।
So the Buddha said, okay, just learn one line.
और बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक पंक्ति पढ़ो।
So the monk went away.
तो भिक्षु वो चला जाता है।
Later he came back.
फिर वो वापस आता है।
No luck.
अभी भी कुछ नहीं जमा।
So the Buddha said, never mind, half a line.
तो बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं, आधी पंक्ति पढ़ो।
So he learned that half line.
और फिर आधी पंक्ति को वो कंठस्थ कर।
That stayed in his mind.
और वो उसके मन में रुक जाता है।
And just reflecting on that one line, He gained enlightenment.
और उसी एक ही आधी पंक्ति को उस पर चिंतन करके वो बुद्ध बन जाता
है. If you really reflect on anicca, anatman, and dukkha, you will gain enlightenment.
अगर आप सही में अनित्य, दुख और अनात्म पर चिंतन करते हैं, तो आप बुद्ध बन सकते हैं.
But don't take this monk as an excuse.
तो अभी इस भिक्षु को अपना बचाव करने के लिए उसका उपयोग मत करो.
Most of you can learn a lot more than that.
आप में से बहुत कुछ लोग उससे बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं.
So really understand what the Buddha teaches.
तो सही में ये समझने की कोशिश करिए बुद्ध क्या सिखाते हैं.
Then you can put into practice.
और फिर आप उसको आचरण में ला सकते हैं.
So the first step in prajna is sutamai prajna, shrutamai prajna.
तो पहला चरण है प्रज्ञा में, वह है श्रुतमय प्रज्ञा.
Panya, sutamai panya.
Sutamai panya.
Then the second step is chintamai pranya.
तो दूसरी जो प्रज्ञा है वह है चिंतामय प्रज्ञा.
Or chintamai panya.
या चिंतामय panya.
So that means the wisdom that comes through thinking, through reflection.
तो इसका मतलब चिंतन करके, सोच कर जो प्रज्ञा प्राप्त होती है.
So you don't just listen to what the Buddha says.
बुद्ध क्या कहते हैं वो आप केवल सुनते नहीं.
You know, in some religions, you just learn off some words.
आप जानते हो कुछ धर्मों में कुछ शब्दों को आप कंठस्थ कर लेते हो.
You learn some Sanskrit.
कुछ संस्कृत पढ़ लेते हो.
And you can say a lot of Sanskrit words.
बहुत सारे संस्कृत शब्द आप बोल सकते हैं.
You can say the mantras.
मंत्र बोल सकते हैं.
But you don't know what they mean.
लेकिन उसका मतलब क्या है आप नहीं जानते.
You don't even think about what they mean.
इसका मतलब क्या है इसके बारे में सोचते भी नहीं.
Well, in Buddhism, we're not like that.
लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है.
We don't just use words.
हम केवल शब्दों का उपयोग नहीं करते.
Yes, we use Pali, for instance.
उदाहरण के लिए हम पाली का उपयोग.
Learn what it means.
लेकिन सीखिए कि उसका मतलब क्या है.
And then think about it.
और फिर उसके बारे में सोचिए.
You need to think. Does this make sense?
तो आप इसको सोचना चाहिए क्या इससे कोई उसका अर्थ लगता है.
Is this reasonable?
क्या ये तर्क में पटने वाला है.
Is my experience like this?
क्या मेरा अनुभव भी ऐसा है.
You know, the Buddha says everything is impermanent.
बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है.
Well, think about that.
इसके बारे में सोचिए.
Don't go around just saying everything's impermanent, everything's impermanent, everything's impermanent.
तो ऐसा बस बकते हुए मत चलिए कि सब अनित्य है, सब अनित्य है.
So think, well, is everything impermanent?
पूछिए सवाल कि क्या सब अनित्य है.
Try to find something that's permanent.
अब ऐसी चीज खोजने की कोशिश कीजिए कि जो सही में नित्य है.
Is there a self? Is there an atman?
तो क्या कोई आत्मा है अंदर.
Try and look for an atman.
उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश.
I remember when I was a child, I used to be frightened of ghosts.
अब मुझे मालूम है कि मैं जब बच्चा था तो मुझे भूत की बहुत डर लगता था.
And I remember my father. He said to me, look, there are no ghosts. No such thing as ghosts.
अब मेरे पिता मुझे बता रहे कि ये भूत भी कुछ नहीं रहता है.
But I said, yeah, no, but I'm frightened. They're there.
लेकिन मुझे लगता है नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, भूत है.
So he used to have to go into my room, open all the cupboards, shine his torch round.
अब वो मेरे कमरे में आते थे, वहाँ के सब कपाट वगैरह जो खोल के, अलमारियाँ खोल के दिखाते थे, टॉर्च से अंदर दिखाते थे.
So look, no ghost there.
तो देखो इधर कोई भूत नहीं है.
Then look under my bed.
मेरे बेड के नीचे टॉर्च लगा के देखते.
Say look, no ghost.
तो यहाँ पर भी कोई भूत नहीं है.
Look behind the curtains. Look, no ghost.
यहाँ पर्दों के पीछे भी देखो, यहाँ पर भी भूत नहीं है.
So then I said, ठीक है.
तो मैं कहता था फिर ठीक है,
भूत नहीं है. And then I could sleep.
और फिर मैं सो सकता था.
So go looking for आत्मा.
तो इसलिए इसी तरह से आत्मा को ढूंढने निकलो.
The भूत आत्मा.
ये आत्मा का भूत है, उसको ढूंढो.
Go looking with your torch.
तो अपने ये टॉर्च को लेके जाओ और उसको ढूंढो.
The torch of wisdom.
अपनी प्रज्ञा की जो टॉर्च है उसको लेकर जाओ.
So look in my body. Is there something permanent?
तो सोचो कि मेरे शरीर में कुछ अनित्य है क्या, पक्का है क्या?
In my mind, is there anything permanent?
क्या मेरे मन में कुछ पक्का है?
If you find something permanent, please bring it to me.
अगर कुछ पक्का मिलता है तो मेरे तरफ लाओ उसको.
I would like to see it.
मैं देखना चाहूंगा.
This is my challenge to you.
तो ये मैं आपको आह्वान देता हूँ.
If you can find something, show it to me.
अगर ऐसा कोई पक्का आपको मिलता है तो मुझे दिखाओ.
And then I will touch your feet.
मैं आपके पैर छूऊंगा.
And I will believe in you as the great guru.
और मैं आपको बहुत महान गुरु करके मानूंगा.
So find Atman for yourself.
खुद आत्मा को ढूंढो.
then you'll convince yourself that there is no such thing.
और फिर आपका विश्वास होगा कि आत्मा नहीं है.
So the Buddha says, think about my teachings.
तो बुद्ध कहते हैं कि मेरी शिक्षा के बारे में सोचो.
He says, prove them in your own experience.
अपने अनुभव से उसको सिद्ध करने की कोशिश करो.
Apply your thought to it.
उसके लिए अपने विचारों को लगाओ.
The Buddhist religion is an extremely intelligent religion.
बौद्ध धर्म बहुत ही बुद्धिमत्ता का धर्म है.
It asks us to be fully reasonable.
यह हमको पूरी तरह से तर्क का उपयोग करने के लिए कहता है.
So yes, learn the teaching, then think about it.
तो आप शिक्षाओं को पढ़ो और उसके बारे में सोचो.
But then you have to go a step further.
इसके भी आगे एक कदम हमें जाना.
It's not enough just to be intellectually convinced.
अभी पूरी तरह से बुद्धि से समझ जाना इतना ही पर्याप्त नहीं है.
You know, for instance, I said that when my father showed me that there was no ghost, I was convinced.
तो जब मैंने कहा है कि जब मेरे पिता ने देखा कि कोई भूत नहीं है तो मेरा विश्वास बैठा.
So you have to be not just intellectually convinced, you have to be emotionally convinced.
तो केवल बुद्धि से ही पटना जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, भावनाओं से भी ये विश्वास होना चाहिए.
We may not believe in Atman.
हो सकता है कि हम आत्मा पर विश्वास नहीं रखें.
But we act as if there was Atman.
लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि वही आत्मा है.
You know, somebody calls you something very unpleasant.
आप किसी को कोई आपको कुछ बहुत ही दुखद शब्द से बात करता है.
Kumarajiv, you're a blankety blankety blank.
उन्होंने मुझे गाली दी.
And what do we feel?
तो हमें क्या लगता है?
You feel very very angry.
तो आपको बहुत गुस्सा आता है.
Very upset.
बहुत ही दुख होता है.
You want to hit, you want to kill even.
आपको लगता है कि उसको मारो या उसको खून कर दो.
People will kill for words.
शब्दों के लिए लोग एक दूसरे की हत्या करते.
So in other words, we may not believe in Atman, but deep down, we still believe in Atman.
तो हो सकता है कि ऊपरी तौर से हम लोग को लगता है कि हम आत्मा पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन गहराई में वो आत्मा है.
We think there's something there that can be hurt.
हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई पक्की बात है जिसको धक्का मारा जा सकता है.
In English we have a saying, sticks and stones may hurt my bones.
तो अंग्रेजी में कहावत है कि लाठियां और पत्थर मेरे हड्डियों को नुकसान पहुंचाए.
But words can never hurt me.
लेकिन शब्दों से मुझे कोई नुकसान न हो.
Actually, words hurt us much more than sticks and stones.
लेकिन शब्द ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं ये पत्थरों से और लाठियों से.
Because of Atman in our minds.
क्योंकि हमारे मन में ये आत्मा होता है.
Atman is this strong, deep feeling that you are fixed, you're permanent, you're important.
तो आत्मा इसका मतलब मैं हूँ, मैं महत्व का हूँ और मैं कुछ पक्का हूँ ऐसा सोचना.
When you called me that, you were calling the sun just the earth.
तो जब आप मुझे ऐसा कहते थे तो ऐसे सूरज को पृथ्वी बोल रहे ऐसा हो गया.
You were insulting me.
आप मेरा अपमान कर रहे हो.
And you feel so upset.
और आपको बहुत दुख होता है.
So we have to go deeper inside ourselves.
So हमारे अंदर हमें बहुत गहराई में जाना जरूरी होता है.
So we have to go from chintamayi prajna to bhavanamayi prajna.
तो इसके बाद हमें चिंतामय प्रज्ञा से भावनामय प्रज्ञा तक जाना पड़ता
है. Bhavanamayi prajna means meditating on what the Buddha says.
भावनामय प्रज्ञा इसका मतलब बुद्ध जो कुछ कहते हैं उस पर ध्यान करना.
So you take your very deep samadhi.
तो आप अपने बहुत गहरी समाधि में जाते हो.
And you consider impermanence.
और फिर अनित्य को देखने की कोशिश करते.
For instance, we're doing the anapanasati.
उदाहरण के लिए हम लोग आनापानसती करते हैं.
We're becoming somewhat concentrated.
हम कुछ एकाग्र होने की कोशिश करते हैं.
At the end of the anapanasati, you look at the breath.
तो अगर आनापानसती के अंत में आप जाते हो तो आपने श्वास के तरफ देखते.
You see that this breath is something just constantly changing.
तो आप देखते हैं कि ये जो श्वास है ऐसी बात है जो सातत्य से बदल रहा है.
We say the word breath.
हम श्वास ये शब्द कहते हैं.
But breath isn't a thing.
लेकिन ये श्वास कोई वस्तु नहीं है.
Breath is just a movement in and out of air.
तो ये श्वास जो है शरीर के अंदर और बाहर जाने वाली एक थोड़ी हलचल है.
Constantly changing. Every breath is different.
और हर श्वास जो है सातत्य से बदल रहा है और हर श्वास अलग है.
So you try to see impermanence in your experience of breathing.
तो आपके श्वास का जो अनुभव है उसमें आप अनित्यता अनुभव करते हैं.
You see, you got the idea, my breath.
तो आपके मन में कल्पना है कि मेरा श्वास है.
But you can't own the breath.
लेकिन श्वास का किसी कोई किसी श्वास का मालिक नहीं हो सकता.
The breath just goes on.
ये श्वास तो चलता ही रहता
है. It's not really your breath.
ये कोई आपका श्वास नहीं है.
When you're breathing, you don't actually force the breath.
तो जब आप श्वास लेते हो तो उसको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता.
You don't will the breath.
आपको इच्छा नहीं रखना पड़ता है कि मैं श्वास लूंगा.
You can, you know, I tell you to take two or three deep breaths.
तो मैं आपको कभी कहता हूँ कि दो या तीन दीर्घ श्वास लीजिए.
But you couldn't live like that.
लेकिन ऐसा ही करते रहने से आप जीवोगे नहीं.
You die because you get too much oxygen or not enough oxygen.
तो आप मर जाओगे, या तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आएगा या तो कम आएगा.
So you just breathe naturally, your body breathes.
तो आपका शरीर जो है नैसर्गिक रूप से वो श्वास लेता है.
So you try to see that breathing is just happening.
तो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो श्वास जो है ये हो रहा है.
This breathing is not me, it's not mine, it's not myself.
तो ये श्वास जो है मैं नहीं हूँ, मेरा मालिकी वाला बात नहीं है.
The ancient Indians believed the breath was the self.
तो जो प्राचीन भारतीय लोग थे वो ये विश्वास करते थे कि श्वास ही आत्मा है.
But the breath doesn't belong to anybody.
लेकिन इस श्वास को किसी की मालकी नहीं हो सकती.
I'm breathing out, you're breathing in the air that I've breathed out.
अभी जो श्वास मैंने श्वास में जो हवा ली थी वो आप दूसरे वक्त आप वही हवा ले रहे हैं.
It's not my breath, not your breath, it's just air.
तो ये ना मेरा श्वास है ना तुम्हारा श्वास है, ये केवल हवा है.
So you try to see that.
तो ये बात आप देखने की कोशिश करते हैं.
You try to let the breathing just go on without feeling this is mine.
तो आप इस श्वास को चलने देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है.
And a very beautiful feeling of detachment, of ease comes upon you.
और बहुत ही अच्छी सुंदर ऐसी भावना जो है अनासक्ति की आपके मन में निर्माण होती है.
The breathing is just going on.
श्वास चलते रहता है.
And you're just aware of it.
और आप उसके बारे में सजग होते हैं.
It's not even that you are aware, there is just awareness of breathing.
और आप उसके बारे में जागरूक हो ऐसा भी नहीं होता है, वो केवल एक शुद्ध सजगता होती है.
So this is the beginning of bhavnamay prajna.
और ये भावनामय प्रज्ञा की शुरुआत है.
And as bhavnamay prajna develops, you see very, very deeply everything is impermanent.
और जैसे ये भावनामय प्रज्ञा का विकास होता है, आप गहराई से देखते हो कि सब कुछ अनित्य है.
That means you feel completely detached, you feel completely at ease.
इसका मतलब आप पूरी तरह से अनासक्त महसूस करोगे, पूरी तरह से सहजता महसूस करोगे.
You see very, very deeply there is no atman.
आप बहुत गहराई से देखोगे कि एक आत्मा नहीं है.
That means you feel very, very creative, very open.
इसका मतलब आपको बहुत ही सृजकता महसूस होगी, खुलापन महसूस होगा.
Nothing's fixed, nothing's blocking you.
आपको कुछ नहीं रोक सकता है, आप कुछ पक्का नहीं है. आप
Wherever you are, whatever's going on, you can find some creative way forward.
जहां पर भी जो कुछ भी चल रहा हो आपको एक नया मार्ग मिलेगा.
You see that there's no permanent happiness to be attained in this life.
आप ये देखोगे कि इस जीवन में नित्य सुख नहीं मिल सकता.
And that means you can find the deep, the true happiness of freedom.
और इसका मतलब जो स्वतंत्रता, ये विमुक्ति का सच्चा जो सुख है उसको आप ढूंढोगे.
So this is the final stage of the Buddhist path.
तो ये बुद्ध मार्ग की, धम्म मार्ग का एक अंतिम चरण है.
And of course it's embodied in the Buddha.
और ये बुद्ध में प्रतीक रूप में है.
The Buddha is the one who's attained complete prajna.
बुद्ध वो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी प्रज्ञा प्राप्त की.
He's samyak sambuddha.
वे सम्यक संबुद्ध है.
Fully and perfectly awakened.
पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से जागरूक.
He sees life exactly as it is.
वो जीवन को जैसा है वैसा देखते हैं.
Every action that he takes is not just prajna, it's karuna.
अब जो भी कृति वो करते हैं वो केवल प्रज्ञा नहीं करुणा भी होती.
Once you've got rid of the lakshanas, then every action you take is full of maitri, full of karuna.
जब इन लक्षणों से आप मुक्त हो जाते हैं तो जो भी कृति आप करते हैं वो प्रज्ञा होती है, करुणा होती है.
So the Buddha is the essence of prajna.
तो बुद्ध ये प्रज्ञा का सार है.
He is the essence of karuna.
और वो करुणा का सार है.
And this is the goal that we need to attain.
और यही हमारा ध्येय है जहां तक हमें पहुंचना.
We need to practice the path so we come closer and closer to the Buddha.
तो हमें इस मार्ग का आचरण करना है ताकि हम बुद्ध के और करीब जा सकें.
Then we will get rid of the roots of all evil.
और तब हम इन सभी बुराइयों की को जड़ों से उखाड़ सकें.
We'll get rid of the roots from which caste comes.
और जिस जड़ों से ये जाति निर्माण होती है उसको हम नष्ट कर सकें.
So it's not enough just to agitate.
तो इसलिए केवल कुछ संघर्ष करना ही पर्याप्त नहीं है.
That needs to happen.
ये होना चाहिए.
It's not enough to struggle for political change.
केवल राजनीतिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना ही पर्याप्त नहीं
है. That needs to happen.
इसकी भी जरूरत है.
But most of all, what we need is prajna.
लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमें किस बात की जरूरत है वह है प्रज्ञा.
And this is what the Buddha teaches us.
और यही बुद्ध हमें सिखाते हैं.
He teaches us a permanent change in our whole mind.
वे हमें सिखाते हैं कि हमारे संपूर्ण मन में परिपूर्ण बदलाव.
This is what Baba Sahib wanted us to develop.
और यही बाबा साहब चाहते हैं कि हम उसका विकास.
In the 22 pratityas, he says we commit ourselves to developing maitri, karuna and prajna.
22 प्रतिज्ञाओं में वो कहते हैं कि हम मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का विकास करेंगे.
And this is the path we must follow if we are to develop these qualities.
अगर इन गुणों को हमें विकास करना है तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा.
So there we are, we've seen the whole path.
तो यहाँ पर हमने संपूर्ण धर्म मार्ग को देखा है.
Today's talk was perhaps a little bit more heavy.
तो आज का प्रवचन शायद थोड़ा ज्यादा जड़ हुआ होगा.
But we want to deal with the essence of the Dhamma.
लेकिन हमें जो धम्म का जो सार है वो देखना था.
Because we need to practice that.
क्योंकि इसका आचरण हमें करना है.
Everybody can practice this.
हर एक इसका आचरण कर सकता है.
This is not just for educated people.
ये केवल शिक्षित लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है.
In fact, sometimes educated people have got so many ideas they don't look at the Dhamma.
कभी कभी शिक्षित लोग होते हैं, उनकी दिमाग में इतनी बातें होती हैं कि वो धम्म सही ढंग से नहीं देख सकते.
But every one of us can look at impermanence, anatman and dukkha.
तो एक शब्द में अनित्य, अनात्म और दुख, इनको देख.
नमो बुद्धाय. Jai Bhim.